أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وواسب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. موضوع درس مفاخر اسلام. گزشتہ گفتگو میں امام موسیٰ صدر کے بارے میں کچھ بیان کیا تھا. امام موسیٰ صدر جس نے بزرگ مفسر قرآن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی اور دیگر علماء آیت اللہ محسن الحکیم، آیت اللہ شیخ آل یاسین کے محضر سے انہوں نے فیض حاصل کیا، اس کو دہرانے کا مقصد نہیں ہے. لبنان کے علماء کی دعوت پر آپ نے لبنان کے شہر سور کی جانب عزم کیا، اور لبنان کے اجتماعی جو حیثیت ہے، فرقوں کے اعتبار سے چار فرقے، مسلمان، مارونی، کیتھولک، دروزی، قبائل کے اعتبار سے بتاتے ہیں کہ 16 قبائل ہوتے ہیں، لبنانیوں کے 16 قبائل ہوتے ہیں، اور ہر قبیلے کی جو ہے کسی کو سربراہ بنا کر ایک حکومتی نظام وہ چلاتے ہیں. جنوب لبنان شیعوں کا علاقہ ہے. جنوب لبنان میں امام موسیٰ صدر کے آنے سے پہلے دو شخصیت کی قیادت ہے. ایک کا نام ہے کامل اسعد اور دوسرے کا نام ہے کاظم خلیل. کامل اسعد، اس کی وابستگی لبنان کی مرکزی حکومت سے تھی. مرکزی حکومت جس کی طرف اشارہ کریں وہ اس کے ساتھ ہو جاتے تھے. اور دوسرا یہ کہ کاظم خلیل امریکہ اور اسرائیل کی پٹھو کامل شمعون کے حامی تھے، اور مرکزی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا جو بھی مرکزی نظام ہو، حکومتی نظام ہو، ان دونوں کے بغیر کسی سے نہ لیا جائے. چنانچہ اس کتاب میں لکھا ہے، ہمارے قبلہ صاحب سے میں نے لیا ہے، ये किताब मिसाली लोक, मिसाली लोक के उनवान पर सिर्फ इमाम मूसा सदर पर लिखा है, ये सिर्फ इमाम मूसा सदर के शख्सियत पर लिखा है। इस किताब में लिखा है कि लोगों के जनूब लबनान के जो है ज़राअत तूतून है, तंबाकू, तंबाकू का की ज़राअत करते और उसके फ़रोग करने के लिए भी वो लोग जिसकी वाबस्तगी मरकज़ी हुकूमत से है उसके अलावा फ़रोग नहीं कर सकता, और न जनूब लबनान के लोग किसी मालदार लोगों के मसलन ज़राअत के निज़ाम में हिस्सा ले सकता था। इस किताब में लिखा है कि इमाम मूसा सदर के इर्द गिर्द जितने भी लोग थे वो या तो होटल के वेटर थे या बूट के पॉलिश लगाने वाले थे या किसी कारखाने में मुलाजिम काम करने वाले थे। हद ये है कि किसी ईसाई कारखाने में काम करने वाले मुसलमान जवान को ये खौफ होता था कि कहीं बॉस नाराज़ ना हो जाए नमाज़ पढ़ने से, नमाज़ पढ़ने में खौफ हो जाती थी, नमाज़ पढ़ने में खौफ आते थी और वो नमाज़ नहीं पढ़ सकते थे बॉस की नाराज़गी की वजह से। ये एक ऐसा आलम, ऐसे में जनाब इमाम मूसा सदर ने वहाँ काम किया और ये फरमाया मुझे इन्हीं लोगों में काम करने पर मुझे फ़ख्र है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने मुझे अपने खिदमत के लिए चुन लिया है। इमाम मूसा सदर, हाँ मुझे जैसा तालिबे इल्म का क्या काम है, कहीं कोई ऐसा पैसे वाले से और ऐसे मस्जिद हो जिसमें बड़े पैसे वाले भी आ जाएं, बड़े ऐसे सरकर्दा लोग आएं। तो उन्होंने अपनी खिदमत के लिए एक ऐसा इलाका, एक ऐसा माहौल का इंतखाब किया जिसमें लोग मजदूर हैं, बूट पॉलिश लगाने वाले हैं, होटल के वेटर हैं, इन लोगों में जाके काम करना ये अपने लिए फ़ख्र समझते थे। जुनूब लबनान के तमाम तकरीबन 465 गांव, जुनूब लबनान के 465 गांवों में से तालीम की शरह तालीम ये है कि दो हाई स्कूल है, सिर्फ दो हाई स्कूल 465 गांवों में। बताते हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात छोड़े, दो हाई स्कूल था। तालीम की पसमानदगी के वजह से ये लोग मजबूर थे कि कारखाने में जाकर काम करें। इमाम मूसा सदर ने इस पसमानदगी को दूर करने के लिए एक अजीम सकाफती मरकज़ की बुनियाद डाली। उन्होंने लबनान के माहौल को पर गौर करने के बाद ये देखा कि आज़ादारी की मजलिसों से हफ्तावार या माहानावार दीनी महफिलों की इनकाद से शेयत की तारीख और दीनी उलूम की फैलाव में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। तवज्जो रहे, ये जो आप एहतमाम करते हो, तशरीफ लाते हो, गर्चे एक बहरहाल अच्छे माशाल्लाह हमारे उलमा तशरीफ फरमा हैं, बुजुर्गान तशरीफ फरमा हैं, आप तशरीफ लाते हैं और इन बच्चों को रागिब करते हैं, बिठा देते हैं। ये जो है ये लबनान ऐसे में ख्वाब देखने से नहीं बना, आज का जो हिज़्बुल्लाह लबनान बन गया है, ये हिज़्बुल्लाह लबनान बनने के लिए इनकी कुर्बानियाँ हैं, इमाम मूसा सदर की अनथक कुर्बानी है, डॉक्टर चमरान की अनथक कुर्बानियाँ हैं। دیگر علماء لبنان کے جو ہے محنتیں ہیں. امام موسیٰ صدر نے سب سے پہلے عزاداری کے مجلسوں سے درس و دروس سے شروع کیا. فرماتے ہیں کہ حاضرین کی تعداد بہت کم ہوتی تھی اور اس زمانے میں درس و دروس مجالس تو ہوتے تھے مگر بہت ہی محدود مختصر سے موضوعات پر ڈسکس کرتے اور بس والسلام, اور کچھ نہیں تھا. سید موسیٰ صدر نے لبنان پہنچتے ہی انہی مجلسوں سے شروع کرنے کی ٹھان لی. ابتدا میں شہر سور میں ان کے اطراف میں بسنے والوں وانے لوگوں کے لیے جمعہ جمعرات شبانہ پروگرام میں شرکت کی دعوت دی اور جناب موسیٰ صدر نے لوگوں کی عدم دلچسپی کو دیکھ کر انہیں ہمت دیا. کہا کہ عزیزان گرامی, پڑھنا اور پڑھانا عبادت ہے, ایک مقدس مشن ہے. آقا فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کر اسلام کے موضوع پر گفتگو کریں اور کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں, کچھ سیکھنا چاہیں تو سیکھ لیں. نہیں, اگر آپ علوم اسلامی سے آگاہ ہیں, ہاں ساری گتھیاں سلجھا سکتے ہیں تو ہم آپ سے استفادہ کریں. ایسا نہیں ایک حاکمانہ انداز ہے, ہاں میں آیا ہوں سب علوم اسلامی میں دوں گا, ایسا نہیں. کہاں, اگر آپ ہی علوم اسلامی کے مالک ہیں, ہم آپ کے محضر سے ہم فیض حاصل کریں گے, ہم فائدہ اٹھائیں گے. صحیح ہے جی. انہوں نے انہی مجلسوں کے ذریعے سے شروع کیا. ماہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو خصوصی کارڈ دے کر دعوت دیا اور مجالس کے دورانیے کو 2 گھنٹہ قرار دیا, 2 گھنٹے میں والسلام, بس اسی میں سب کچھ ہونا چاہیے. اب آئیے, سید موسیٰ صدر نے اپنے اس 2 گھنٹے میں کن چیزوں میں تقسیم کیا ہے, یہ ہمارے لیے نمونہ مثال ہے. فرماتے ہیں اس 2 گھنٹے کو مختلف موضوعات پر تقسیم کیا. ایک اچھے سے خوبصورت آواز والے قاری قرآن کو تلاوت قرآن کا موقع دیتے, پھر مختصر سا حصہ تاریخ, اخلاقی داستان, ایک آیت کی تفسیر, ایک فقہی مسئلہ, ادبیات گرامر, انگریزی گرامر, عربی گرامر, فارسی گرامر, علم ہے نا, علم سیکھے نا گرامر. پھر اس کے علاوہ کیا صرف اسلام کی بات ہے تو اسلام اور سیاست جدا نہیں ہے, لہذا انہوں نے اپنے اس پروگرام میں اسلامی دنیا کی خبریں اور اس پر گفتگو کرنا. فرماتے ہیں ہر آئٹم سے 5 منٹ, ہر آئٹم کے لیے 5 منٹ رکھے تھے, 5 منٹ میں گفتگو کریں, ہاں بوریت بھی نہ ہو. پھر اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ, سوال کریں جواب پائیں, ہے نا. اس بچوں کے ذہن میں کیا کیا سوال اٹھتا ہے اللہ جانے. اب اچھے سے ماہر استاد بیٹھیں اور ان کے جواب کو اس کے اپنے سطح فکری کے مطابق جواب دیں, بہت خدمت ہے, بہت بڑی خدمت. پھر کیا کرتے ہیں, پھر ان نوجوان دوستوں کو موقع دیتے, تم آ کر تقریر کرو, آدھا گھنٹے کی تقریر کرو, ان کو ہمت دیتے, ان کی اپنی شخصیت کو نکھار پیدا کر. فرماتے ہیں کہ اس کام کا اس قدر ناقابل تصور نتیجہ مل گیا کہ کوئی حد نہیں ہے. رمضان کی راتوں میں وہ جوان جو سینما گھروں کا طواف کرنے والا جوان, سینما گھروں کا پروانہ وار طواف کرنے والا, منہ کھول کے کوئی بھی حشرہ منہ میں چلے جائے اس کو پرواہ نہیں ہے, بس یہ سینما میں جا کر یہ دیکھنا ہے, ایسے جوانوں کو جذب کیا. انہوں نے طواف کرنا چھوڑ دیا, سینما کا طواف کرنا چھوڑ دیا, ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کے لیے और इन्हीं प्रोग्राम में रागिब होकर आकर बैठते थे जवान, फ़ायदा उठाते थे। और फरमाते हैं कि जब वो प्रोग्राम अपने मुकर्रर वक्त पर ख़त्म हो गया तो उन्होंने तजवीज़ पेश किया, ये हफ्तावार रखें, ये प्रोग्राम हफ्तावार जारी रखें, एक सादा सी मगर मुनज़्ज़म और फ़िक्री बुनियादों पर उस्तवार नौजवान बुज़ुर्गों की ख़ुसूसी तवज्जुह का बाइस बनी। कुछ अरसे के बाद इमाम मूसा सदर ने बहर अहमर के किनारे एक बड़ा क़िता ख़रीदा, ज़मीन ख़रीदा और मुख्तसर मुद्दत में एक अजीम इमारत की तामीर की और इस इदारे का नाम रखा अंजुमन जवानान मुसलमान के नाम पर इस इदारे का नाम रखा। और बताते हैं कि इस इदारे में मुसलमान जवानों के अलावा ईसाई जवान भी अपनी जो है इल्मी प्यास बुझाने के लिए आते थे। ये तो हो गया कुछ इल्मी काम, सकाफती काम हो गया। बताते हैं कि जबल आमिल में फ़क्र और तंगदस्ती का यह आलम था कि जबल आमिल के गलियों में एक 120 से ज़ायद लोग भीख मांगने वाले नज़र आते थे। सैयद मूसा के लिए ये बहुत ही सख्त और परेशान कुन मसला था। उन्होंने एक इदारा बनाया जिसका नाम बिर व एहसान, एक तंजीम बनाया बिर व एहसान, अरबी में बिर एहसान यानी नेकी करना, लोगों को के साथ नेकी करना, बिर एहसान का तंजीम बनाया। और ये मुकर्रर किया टीम का हर रुकन जो है एक लबनानी लीरा, हमारे यहाँ रुपया चलता है ना, उनके यहाँ लीरा, लीरा पैसा है या क्या है अल्लाह जाने, हम आगा बताएं, सही है लीरा। ये टीम जो है हर फर्द अपने तौर पर जाती चंदा जमा करेगा। और उन्होंने अपने इस फ़क्र व तंगदस्ती के लानत को ख़त्म करने के लिए एक कमेटी बनाया। ये कमेटी 5 हिस्सों में तकसीम हो गया, तहकीकाती कमेटी, प्लानिंग कमेटी, माली कमेटी और तबलीगाती प्रोपेगंडा या तबलीग करने की जो है इदारा अलग से, फिर मजहबी जो काम है उसका इदारा अलग किया। करने के बाद आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की 2 हदीसों की बुनियाद पर आइमा ने फरमाया कि हमारे मानने वाले किसी के सामने हाथ फैलाने पर मौत को तरजीह देता है। आइमा ने फरमाया हमारा मानने वाला ठीक है, करीब हैं, तंगदस्त हैं, मगर किसी के सामने हाथ फैलाने से अपने लिए मौत को तरजीह देता है। एक दूसरा ये कि पेशेवर शख्स को सदका देना, उसकी माली लिहाज तो ठीक है, उसको सदका देना जायज़ नहीं समझते हैं मैं मासूमीन की अहादीस में। इन्हीं 2 हदीसों की बुनियाद पर एक तहकीकाती कमेटी बनाया ताकि सारे बेकारियों का एक लिस्ट तैयार करें। लिस्ट तैयार करने के बाद ये चंद तबकों में तकसीम हो गए। एक तबका इधर पैसा भी ले रहा है और उसी के पैसे पर सूदी कारोबार भी कर रहा है। दूसरा गिरोह ये था कि काम करने की तवनाई है मगर काम नहीं करते हैं। तीसरा तबका उनके वो गरीब तो हैं मगर उनके रिश्तेदार बड़े मज़े में हैं। चौथा तबका ये है कि उनका कोई सहारा नहीं है। ये 4 गिरोह। फरमाया पहले गिरोह को हर तरह से माली इमदाद से महरूम कर देना चाहिए था, वो इधर से पैसा भी लेता है, सूद भी जो है सूदी कारोबार भी कर रहा है। कहा इसको अपने माली इमदाद से महरूम किया, इसको जायज़ नहीं है, मत दो। वस्सलाम। दूसरे गुरोह के लिए वो जो काम नहीं करते थे उनके लिए काम का इंतज़ाम किया, काम कहीं कोई वसीला होकर तो ये काम करो, मशवरा देना भी बहुत बड़ी बात है और वसीला हो कि भाई हमारे माशरे में कोई साहिब हैसियत हो उनसे कहें कि भाई ये सारे लोग हैं काम करना चाहते हैं, अब इनके लिए कोई मौका फराहम। ये दूसरा गुरोह। तीसरे गुरोह उनके रिश्तेदारों से रابطہ करके उनके लिए तवज्जो दिलाते थे। और चौथे गुरोह के लिए क्या, चौथे गुरोह के लिए वो जितने भी हो सकें उनकी मदद करते थे। फिर इधर जनाब इमाम मूसा सदर ने जबल आमिल के रहने वालों को, आवाम को ये कहा कि तुम्हारा इन फुकरा को जो पेशेवर फुकरा हैं उनको पैसा देना जायज़ नहीं है, और जो भी तुम मदद करना चाहें तो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में डाल दें, हम जो है इसे उनके हकदार तक पहुंचा देंगे। तंजीमें बिर व एहसान के वाबिस्ता तमाम फ़कीरों की मदद हुई बिला तफरीक मजहब मिल्लत, सुन्नी हो, शिया हो, ईसाई हो, दुरूजी हो, मारूनी हो, हैं कैथोलिक हो, कोई भी हो, उनकी मदद बिला तफरीक करते थे। ये गरीब कोई भी किसी भी फ़िरके और मकतब से ताल्लुक़ रखते हों उनकी मदद करते हैं। इस काम को देखकर एक ईसाई साहिब हैसियत जो रफ़लए मनसा एक जगह ज़ाहिरन है वहाँ के रहने वाला, उसने अपने बर्फ़ साजी के कारखाने का एक तिहाई हिस्सा तंजीम बिर एहसान को दिया। माजूर नौजवानों की तरबियत के लिए इमाम मूसा सदर ने दारुल अजाज़ा करार दिया, माजूर तबका। ये देखो माशरे में काम करना कोई आसान नहीं है, अगर जब अहले बैत को मानने वाला वाकई सच्चे मानने वाला हो तो इस तरह से काम करते हैं। मुझे तो कोई ऐसा तरीका नहीं आता है, लेकिन है अल्लाह के फजल से हमारे उलमाए किराम पेश पेश हैं। बेसरपरस्त बच्चों की देखभाल के लिए दारुल एताम बनाया, माजूर लोगों के लिए दारुल अजज़ा और यतीम बच्चों की सरपरस्ती के लिए दारुल एताम अमल में ले आए, और इस तरह खिदमत करके वो जो ज़हनियत कि आलिम सिर्फ मेहराब से वाबिस्ता होना चाहिए, माशरे के काम कर नहीं पाता, इसको सैयद मूसा सदर ने उसका बस्तर लपेट लिया। लबनान में औरतों की इस्तेहसाल बताते हैं कि बेरूत मशरिक़ वुस्ता का स्विट्ज़रलैंड था, मशरिक़ वुस्ता का स्विट्ज़रलैंड। अब नहीं मालूम स्विट्ज़रलैंड जाने वाले देखे, हमें तो क्या पता है स्विट्ज़रलैंड में क्या होता है, हैं? स्विट्ज़रलैंड था। अरब बड़े अय्याश लोग अय्याशी के लिए बेरूत आते थे। आदाद व शुमार के हिसाब से बेरूत शहर में 16,000 कहबखाने थे, 16,000 कहबखाने, और 85% जो ज़ाहिर ख़ुदकुशियाँ करने वाले, 85% फ़क्र, नादारी, तंगदस्ती, एक वजह ये भी हो सकती हैं, इन वजूहात के बिना पर जिस्म फरोशी पर मजबूर हो जाते, जिस्म फरोशी पर। 16,000 कहबखाना कोई मामूली फिगर नहीं है, बहुत है। अब औरत ज़ात को इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे में अब आप अंदाज़ा करें जहाँ फहाशी आम हो और यानियत आम हो, और जहन ये है, इसमें इस किताब में लिखा है, सलाम अलैकुम, इस किताब में लिखा है कि लबनान में औरतों के पर्दा बेपर्दा की बात नहीं होती थी, इस कदर और यानियत अरबों के इस्तेलाह में खलात, बिल्कुल नंगा होना, ये ऐसे हालत है। और इसकी एक वजह लबनान की यूरोप से नज़दीक होना, यूरोप के कल्चर से उस क़ुर्बत की वजह से उसकी बिल्कुल सकाफत मिलिया मेट हो चुका है, इस्लामी तशख़ुस कोई नहीं है। ऐसे में ऐसे लिबास पहनना, फैशनेबल लिबास पहनना, हाँ जी ये सारी चीज़ें यूरोप की नज़दीकी एक वजह। दूसरी बात, ऐसे बेअमल जालिम सफाक जालिमों की हुक्मरानी और साहिब नुफूज लोगों की बेअमली की वजह से वो औरतों के ख़रीदार होते थे, ताजिर हैं, ताजिर औरतों को ख़रीद लेना। बताते हैं कि लबनान की फिजा में कारोबार चमकाने के लिए खूबरू लड़कियों की इंतखाब होते थे, खूबरू लड़कियों को इंतखाब करते ताकि इस लड़की की वजह से कारोबार चमक जाए। देखो औरत को किस कदर उसकी हैसियत से खेला। हाँ, और ऐसे में जनाब इमाम मूसा सदर ने औरतों के लिए, औरत की तरबियत और फिक्री इर्तिका के लिए हर चीज़ पर मुकद्दम रखा। इमाम मूसा सदर ने औरतों की तरबियत के लिए तमाम दीगर तमार उमूर पर औरतों की तरबियत को मुकद्दम, उसके को अहमियत दिया। औरतों को मस्जिद की तरफ रागिब करना, मजहबी तकरीबात में नमाज, विलादत, शहादत के मौके पर दर्स दुरूस इफ़हाम व तफहीम इस्लाम के निज़ाम के दर्स का आम करना, इमाम मूसा सदर ने ये काम किया। औरत की शख्सियत गालिबन खूबसूरती, दिखावट, फैशन का नमूना तसव्वुर की जाती थी और इसलिए इस डर से कहीं उन्हें पर्दे हिजाब की तरफ ना बुलाया। उसकी अपनी मिजाज हैं, उसके अपने अंदर की ख्वाहिशात हैं, दिखावट करना है, बना सजा के जो है सब रोड पर आकर, कोठियों पर आकर, छत पे आकर अपने जो है वजूद का इजहार करना, ये होता था। ऐसे में इमाम मूसा सदर ने, उलमाए दीन ने उन्हें एक अच्छे अंदाज से, ये किताब में लिखा है कि इमाम मूसा सदर के अंदाज़े तबलीग से एक तबका हमारे माशरे में भी है ना, कुछ तंग नज़र लोग भी होते हैं, फट से फतवा देते हैं। ये फट से फतवा देने का तरीक़ा नहीं होना चाहिए, तमाम जाविये को देखना चाहिए, तमाम जाविये देखकर फिर कहें ये वाकई ठीक कर रहा है, ये गलत कर रहा है। इस तरह का उस ज़माने में इमाम मूसा सदर जो है ईसाई औरतों के बस बाहर तकरीबात में बाज़ ज़रूरत के मुताबिक जाते, उनका ख़बर लेते, बेपर्दा औरतें होती हैं, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अपने मर्जा तकलीद के खिदमत में जाके इमाम मूसा की शिकायत लगा दी, हुजूर इमाम मूसा सदर तो ईसाई औरतों के साथ जो है उनका उठना बैठना होता है, उनके तकरीबात में जाते हैं, बेपर्दा औरतों के दरमियान बैठते हैं, तो मर्जा तकलीद में बर्जस्ता लफ्ज़ों में ये फरमाया। ख़ुद सैयद मूसा सदर ख़ुद मुज्तहिद हैं, वो ख़ुद जानता है कि तकलीफ़ है शरई क्या है, इस पर चुप हो गए। तो इमाम मूसा सदर ने अब इस औरतों की ज़िल्लत आमेज़ चीज़ों को देखकर उन्होंने तंजीम बिर एहसान में औरतों के लिए रुकनियत मेंबर बनने के लिए दावत दिया, आए आप लोग भी इसके मेंबर बन जाएं। फरमाते हैं कि 200 से जायद औरतों ने रुकनियत हासिल किया, 200 से जायद औरतों ने रुकनियत हासिल किया। पहले साल में एक औरत ने इन तमाम बिर एहसान की खिदमत करने वालों में एवार्ड लिया, इतना सरगर्म हो गई ये खातून कि उन्होंने खैराती उमूर में अनथक कोशिशों की बिना पर एवार्ड लिया। अब इस एवार्ड लेने पर क्या हो गया, दूसरी औरतों ने भी अपने दिलचस्पी का इजहार किया اور خواتین بڑھ چڑھ کے معاشرتی نظام میں حصہ لینے کے بعد بعد ان کی فکری تربیت بھی ہو گئی۔ ان کے لئے الگ سے ایک تنظیم بنایا جس کی بنیاد پر وہ آہستہ آہستہ تقریری نظام، مثلا عورتوں کے پروگرام میں جمعہ کی نماز، ولادت، شہادت پر عورتوں کے لیے الگ سے ایک بحث و مباحثہ، اور یہ ایک ان کی ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے انتظام کیا۔ اب آپ اندازہ کریں، جس ملک میں 16,000 قہوہ خانے ہوں، ایک صرف بیروت کی بات ہے، بیروت صرف بیروت میں 16,000 قہوہ خانے ہیں، اب مرکز بیروت ہے، اس میں اب گاؤں میں دوسرے جگہوں میں یہ فضا پہنچنے میں کوئی کمی نہیں رہ جاتی ہے۔ تعلیمی تنگ دست، تعلیمی کام میں جبل عامل میں دو کالج ہے، عربی میں کالج کو الکلیہ، کلیہ، تو ایک کالج کا نام ہے الکلیہ جعفریہ، جعفریہ کالج، الکلیہ العاملیہ، عاملیہ کالج۔ دو کالج کے طالب علموں کے لیے ہفتہ وار درس رکھا، قرآنی اسلام کے عنوان سے، جو مفکر سید امام موسیٰ صدر کے، ایک مفکر کے نظر میں قرآنی اسلام ہے، اس کا پیغام دیا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ آغاز میں تو ایک توہین آمیز لہجہ ہوتا تھا لڑکوں کی طرف سے، قہقہے لگانا، مذاق اڑانا، ایسے میں سوال کرنا۔ کتاب میں لکھا ہے یہ سخت تھا مرحلہ، بہت برداشت سے باہر تھا، مگر اسلام کے لیے تو برداشت کرنا ہوتا ہے، اللہ کرے ہمیں بھی اس طرح کی ہماری جذبات آئیں، ہمیں توفیق دیں کہ ایسے مرحلوں میں اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنے کی۔ فرماتے ہیں کئی مہینہ گزر گیا اس سلسلہ درس و دروس کا، اس یعنی قرآنی اسلام کے عنوان سے ہفتہ وار درس کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، اس میں عجیب غریب قسم کے سوالات کرتے تھے جوان۔ یہ کتاب لکھنے والے نے کہا کہ وہ امام حسین صدر کے شاید ہمراہ رہنے والے نے جو ہے یہ کتاب لکھا ہے، کہ ایک دن حال سے باہر نکلتے ہوئے نوجوان نے مجھے گھیر لیا، ان میں سے ایک پوچھنے لگا کیا آپ جانتے ہیں کہ کیوں کر نوجوان آپ سے محبت کرتے ہیں، اس حد تک اپنائیت سے پیش آتے ہیں، اور پھر خود ہی کہنے لگا آپ کی باتیں آپ کی تجاویز روحانی نفسیاتی مشکلات کے عین مطابق ہیں۔ اس درس و دروس کے اثر ہو گیا، قہقہ لگانے والوں کو بدل دیا، یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ صاف صاف کہہ دوں کہ آپ ہماری روحانی جسمانی مشکلات پر حقیقت پسندانہ موقف رکھتے ہیں، صبر و حوصلہ اور وقت کے ساتھ ہمارے مشکلات سنتے ہیں، پھر ان کے حل کے لیے تاحد امکان کوشش کرتے ہیں۔ پھر لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ایک شب قدر تھی، دوسرے نوجوانوں کے ہمراہ اس رات مراسم انجام دینے کے لیے امام موسیٰ صدر کے گھر گئے، شب قدر میں مراسم انجام دینے کے امام موسیٰ صدر کے گھر گئے۔ میں نے پہلی بار داڑھی رکھی تھی، وہ جوان کہتا ہے میں نے پہلی بار داڑھی رکھی تھی، بہت پریشان تھا کہ میرا خیال تھا چہرہ کس قدر بدصورت سا ہو گیا ہوگا، لیکن جو ہی امام موسیٰ صدر کی نظریں میری طرف اٹھی، بہت ہی پیار بھرے لہجے میں کہا واہ واہ کتنا خوبصورت اور نورانی چہرہ، الحمدللہ ماشاءاللہ، بہت نکھر گئے ہو، بہت اچھا ہوا۔ اب ایک جوان کے لیے ہاں یہ جملے، ایک اصلاح کرنے والے عالم دین کے جملے، اس کے لیے اس قدر جو ہے مشعل راہ ہو گیا، واہ واہ کیا کہنا ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ، نکھر گئے ہو، خوبصورت ہو گئے ہو، نورانی ہو گیا۔ یہ مومن کو بھی کرنا چاہیے سب کو، ہاں اس طرح جو اچھے کام کرتے ہیں اس کو شوق دلائیں، اس کو ہمت دے دیں۔ ये लिखते हैं कि इस एतमार मोहब्बत में रोज़ बरोज इजाफा होता गया, फिर हम काम करने में पेश पेश नजर आने लगे। हमने उन्हीं सुलझे हुए जवानों तालिबे इल्मों के हमरा रमज़ान से पहले सड़कों गलियों का चक्कर लगाया, काफ़ी शापों मुसाफिर खानों कबाब फरोशों से मुलाकात की और उनसे आमद और रफ़ वाली जगहों पर माह सयाम की रायत के मदद की दरख्वास्त की। खुदावंद करीम के फजल करम से इस अजीम इस्लामी शुआर का एहतराम किया गया। फिर कहते हैं कि इस काम में वो जवान हमारे साथ साथ थे जो एक साल पहले रोज़ाखोरी से परहेज नहीं करते थे, लेकिन इस मरहले तक आना सैयद मूसा के हुसूल मंजिल के माना में नहीं था, सिर्फ इतना नहीं था, इस पर गुजारा नहीं किया, क्योंकि ये नौजवान उसी सूरत में आइडियल बन सकते हैं जब दीनदारी के साथ साथ किसी इल्मी मैदान में भी माहिर हो, किसी इल्मी मैदान में भी माहिर हो ये जवान, ये दीनदार इल्म के साथ साथ दीनदार भी हो, ये आइडियल बनेगा दूसरे जवानों के लिए। फिर मुख्तलिफ इल्मी सनाती मराकज में मुनज़्ज़म होकर काम कर सके। बेशक ऐसे ही मकासद के खातिर सैयद मूसा ने एक अजीम इल्मी मरकज़ इदारे सनअती जबल आमिल के क़याम का फैसला किया, एक टेक्निकल सेंटर ज़ाहिरन। जिस वक्त जनूबी लबनान में इस मरकज़ के क़याम की बात चल रही थी, बाज़ लोगों की राय यह थी इसे बेरूत में कायम किया जाए, लेकिन सैयद मूसा ने इनकार किया और इस मरकज़ के लिए बेहतरीन जगह जनूबी लबनान और दूसरे खित्तों की निस्बत इस सरमाए का ज़्यादा मोहताज करार पाया। सैयद इस सिलसिले में पुरउम्मीद थे, मगर इस अजीम प्रोजेक्ट के लिए कोई सरमाया ना था। जब उनसे इस प्रोजेक्ट पर आने वाले खर्चे के बारे में पूछा जाता तो कहते थे इंशाअल्लाह सरवतमंद शिया अंदर से बाहर से बैरून मुल्क से अंदरूनी मुल्क से मदद करेंगे। इमाम मूसा सदर के जुमले हैं, अगर ऐसा ना हुआ तो बेरूत की साहिली सड़क पर एक खेमा लगा दूंगा। इमाम मूसा सदर कहते हैं बेरूत की साहिली सड़क पर एक खेमा लगा दूंगा, हर गाड़ी वाले से थोड़ी सी मदद मांगूंगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई गाड़ी फल लेकर आती है तो इससे दरख्वास्त करूंगा कि फल की एक छोटी सी पेटी मदरसे को दे दें, अगर खाली थी तो एक लबनानी लीरा पर सब्र करूंगा, एक लबनानी लीरा अगर दे दें सब्र करूंगा। ये इमाम मूसा सदर के जुमले हैं, हिम्मत देखो आदमी, एक आयतुल्ला है, कोई मामले आदमी नहीं है। अभी थोड़ी ही अरसा गुजरा था जनूबी लबनान की खूबसूरत साहिली चोटियों पर लड़कों के सनअती स्कूल ने सर उबारा। इस मरकज़ को 8 साल तक सैयद मूसा के जिगरी दोस्त डॉक्टर मुस्तफ़ा चमरान ने चलाया और इस स्कूल में नौजवान यतीम बच्चे मुख्तलिफ शोबों में जुमला सकाफत आइडियोलॉजी फ़नी उमूर में मुफ्त तालीम हासिल करते थे। लोगों के ऑर्डर वसूल करके अपने इदारे का ख़र्चा चलाते थे। इस इमारत का कुछ हिस्सा दीनी मदरसा महदुद दिरासात इस्लामिया, एक दीनी मदरसा जिसका नाम महदुद दिरासात इस्लामिया के लिए मखसूस किया था, जहां पर लबनान और कई अफ्रीकाई एशियाई एशियन ममालिक से आने वाले तालिबे इल्म हुसूल इल्म में मशरूफ़ थे। असल में सैयद मूसा की एक बड़ी आरज़ू अफ्रीका के लोगों से नज़दीक से ताल्लुकात कायम करना था, इमाम मूसा की दिल की आरज़ू थी। इमाम मूसा ने यह फरमाया था हम मुसलमानों पर फ़र्ज है कि अफ्रीका के तिशनय अकायद आवाम की मदद के लिए उठ खड़े हों, और इससे पहले कि बर आज़म में ईसाई और कम्युनिस्ट उन पर छा जाएँ, इससे पहले हमें जो है इस पर काम करना होगा। अब इसमें और भी हैं इंशाअल्लाह, खुदा ने हमें तौफीक दिया तो ये सारे दिलचस्प बातें हमारे लिए भी मशाल राह है। खुदा करें हम सबको अपने मुआशरे में इस तरह से, इमाम मूसा सदर तो बन नहीं सकता मगर इमाम मूसा सदर की जो है अफकार की रोशनी में अपने हिसाब से, और जहाँ आगा नसीम हैदर जैसे दीगर उलमा हक़ा जो मसलन मुआशरे की तब्दीली के लिए खिदमत कर रहे हैं इसमें भी हिमायत करो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, उनकी ज़बान से मदद करो, کسی اور عنوان سے مدد کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کریں تاکہ یہ معاشرہ مثالی بن جائیں. خدایا ہم سب کو خصوصاً جن علماء کرام کو مفاخر اسلام کے عنوان سے ہم یاد کر رہے ہیں, خداوندہ انہیں خصوصاً امام اسد کو جوار معصومین میں عالی مقام عنایت فرما, امام اثر علیہ الصلوۃ والسلام کو اذن ظہور عنایت فرما. پروردگارا جنہ میں مومن و مومنات بیمار ہیں جن کے لیے دعائے صحت کے التماس سے سب کچھ شفاء کامل واجل عنایت فرما, اور محمد و آل محمد صلوات.